السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. عزیزان گرامی، ہماری تیاری لازمی ہے. تیاری کے ساتھ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تیار ہیں، بلکہ بارگاہ پروردگار میں جو منجی ہے، جو ہماری دعوتوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا مرکز ہے، ماوا ہے، اس کے بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے اور اس ہستی کو بلانا ہے جو دنیا میں امن و امان کو قائم کرنے والی ہے. وہ دن دور نہیں ہے، ہماری تیاری کی ضرورت ہے اور ہم لوگ ذرا سا بیدار ہوں، تیار ہوں. انشاءاللہ مولا تشریف لانے والے ہیں. اور دعا بہترین ذریعہ ہے انسان کا، جو ذات پروردگار کے تقدیرات کا حصہ بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اور یہ دعا جو ہمارے حالات کو، بلکہ ہر مرتبہ اس دعا کو جو قرآنی دعا ہے، ساتھ رکھیے اور ساتھ پڑھتے رہیے، نماز میں ایڈ کریے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. اما بعد فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. عزیزان گرامی، دار القرآن موضوع ہے. دار القرآن کے معنی، ہمارا هدف، ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، خصوصاً مسلم امہ جو گزر رہے ہیں، اس کی وجوہات، کئی وجوہات ہیں. ان میں سے سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو، جو ہمارا انلائٹننگ مرکز ہے، جو مرکز ہے، منبع ہے، فاؤنٹین ہیڈ ہے، اس کو ہم بھلا چکے ہیں. وہ ہمارے زندگی میں شامل نہیں رہا ہے. جب تک ہم قرآن کو اس کی اپنی بتائے ہوئے راہوں کو، بجائے اس کے قرآن میں ہمارے خیالات کو ڈالیں، بلکہ قرآن کے خیالات میں ہم ڈھل جائیں. اور اسی لیے لازمی ہے کہ ایک مومنٹ شروع کیا جائے، ایک قرآن تھان شروع کیا جائے. پہلے ہم جو ناظرین ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میں اپنے نفس سے پہلا سوال ہم یہ کریں کہ کیا ہم نے آج قرآن کی تلاوت کی ہے، کیا قرآن پہ غور کیا ہے. ہمارے جتنے بھی پرابلمس ہیں، اس کے کئی وجوہات ہیں. ان میں سے جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو जो किताब हिदायत, किताब ज़िंदगी है, अलग करके रखा है। चुनांचे कुरान भी सूरह फुरकान की आयत कॉन्स्टेंटली हमें रिमाइंड कराती है, सरकारे रसालत में आपके ज़बानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने फरमाया, आप फरमाएंगे या फरमा रहे हैं, वकाला रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखदु हादल कुरआना महजूरा। ये कंप्लेन है सरकार का कि देखो ए परवरदिगार, मेरी कौम यानी मेरी कौम के माने में मुस्लिम उम्मा ने इस कुरान से दूरी बरती है, नेगलेक्ट है, नेगलिजेंस है। एक साहब ने मैसेज किया है कि अगर कुरान इतना कामयाब है वगैरह वगैरह, तो फिर मुस्लिम उम्मा जो है क्यों इतनी पीछे है, आपस में उलझी हुई, खून खराबा करना, गले काटना वगैरह वगैरह, ये क्यों है? उसका सीधा जवाब यह है कि कुरान किताब अमल है, किताब ज़िंदगी है। सिर्फ वो किताब नहीं है कि हम किसी के मरहूम पर खोल लें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ना खोलें, मोटिवेशन फैक्टर है, लेकिन हकीकत कुरान ज़िंदगी देने के लिए आया है। कितने हम लोग हैं जो इस नीयत से कुरान की तिलावत करें, इस नीयत से। आज मेरे घर का प्रॉब्लम है, मियाँ बीवी के दरमियान प्रॉब्लम, उसका हल क्या है? पहला हल यह है कि मुंबई दीन पे चले जाएं, फाउंटेन हेड पे चले जाएं, उससे पूछें कि परवरदिगार तू हल बता। सबसे पहला हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है, हम लोग इस मादी अंधेरे में गुम हो चुके हैं। चुनांचे सरकार रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना आएगा कद इल्तबसत अलैकुम फितन, इतने फितने होंगे, इतने इम्तिहानात होंगे, कल लैलिल मुवलिम, हर तरफ अंधेरे, घुप अंधेरे होंगे। ये अंधेरे ऊपर से नहीं आए हुए हैं, बल्कि हमने अपने हाथों से क्रिएट किए हैं। और जो मुस्लिम उम्मा जो लीडिंग होना चाहिए थे, वो बिल्कुल बैक हो गई है। अब हमें दुनिया बता रही है कि ये मुसलमान कैसे हैं, और हमें ज़िंदगी जिन जिनको चाहिए था दुनिया को सिविलाइजेशन बताना चाहिए था, अब ये जो नाम नहाद सिविलाइजेशन हमें बता रही है कि तुम्हें किस तरह से ज़िंदगी बसर करना चाहिए। ये इन्हितात, ये ज़िल्लत जो हमारी है, उसकी मेन सर फहरिस वजह इस किताब अज़ीम से, इस किताब हयात से दूरी है। तो पहला हमारा, सब लोग शुरू करें कुरान थान। कुरान थान यानी एक ऐसा मोमेंट कि सबसे पहले मैं अपने आप से नफ्स से सवाल करूं, क्या मैंने कुरान की तिलावत की है कम से कम 10 आयतें तर्जुबे के साथ। और उसके बाद मेरे बीवी बच्चों को रोज़ाना रिमाइंड करो, हर एक आदमी, हर एक मुसलमान रोज़ाना 10 आयतों की ख्वाहिश करें कि डिड यू रीड कुरान, क्या आपने कुरान की तिलावत की है, 10 आयतें पढ़िए तर्जुमे के साथ। हर एक मुसलमान 10 को मैसेज देता जाए, तो ये मैसेज सारी दुनिया तक पहुँचेगा, 10 अफराद को। सरकार ने फरमाया जो 10 आयतों को पढ़ेगा, लम यक्तुब मिनल गाफिलीन, वह हीडलेसनेस हमारा जो है, गफलत जो हमारी है, उसकी वजह इस नूर से दूरी है। उस महफिल में सरकार ने जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि बहुत जल्द अंधेरे छा जाएंगे। उस महफिल में मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। मौला ने पूछा, या रसूलल्लाह, सच टाइम अगर आएगा, ऐसा अंधेरा आएगा, तो क्या करना चाहिए हमें? सरकार ने फरमाया, अलैकुम बिल कुरान, तुम्हारा काम है कि ऐसे मौके पर अगर कोई रोशनी है तो रोशनी कुरान है। और रोशनी हर चीज़ की तरफ गाइड करती है, इंटरप्रेटर मुफस्सिर कुरान की तरफ दावत देती है, और साहिबान कुरान की तरफ दावत देती है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना कहता है कुरान, और कुरान दावत देता है फ़सअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो जाओ जिनके पास इल्म है उनसे सवाल करो। इन्हें डायरेक्ट कर रहा है कुरान उनकी तरफ जो साहिबान इल्म, तो हत्ता कुरान की तरफ सही जाएंगे तो अहले बैत की तरफ कुरान भी डायरेक्ट करेगा। अगर कुरान को हम समझ करके, सोच करके, फ़िक्र के साथ पढ़ेंगे, तो हर लम्हा में ज़रूरत पड़ेगी कुरान के उस्ताद की। और अव्वल उस्ताद कुरान का सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, उसके बाद अलैहि सलाम है। कुरान की ज़बान में आयत तथहीर की ज़बान में मुतहरीन हैं, पाक पाकिज़ा पाक व पाकिज़ा ज़ात हैं, और रासिखून फिल इल्म हैं। सूरह आल इमरान की 7वीं आयत, जिसमें कुरान ने आयात मुहकमात, आयात मुतशाबहात, میں یہ بتایا کہ متشابہات کی تعویل وہ لوگ اپنے مقصد کی کریں گے صرف اپنا الو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن جو راسخان علم ہوں گے، راسخون فی العلم ہوں گے، ان کا خوف اور صرف ذات پروردگار ہوگا، ان کی کوئی تمنا نہیں ہوگی مگر ایک ذات پروردگار۔ تو عزیزان گرامی، تو ہمارا مومن دار القرآن کا ہدف یہی ہے کہ روزانہ ہم اگر ہو سکے تو چھوٹے چھوٹے پامفلیٹ، میں نہیں سمجھ کلر فل پامفلیٹ بھرا، نہیں، ہر ایک آدمی اپنے پاس 10, 15, 20, 25 پامفلیٹ رکھے، ڈیڈ یو ریڈ قرآن، آپ نے قرآن کی تلاوت کی آج ترجمے کے ساتھ پڑھی؟ بعض ہمارے مومنین سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے قرآن قرآن کہنے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے یہ کہہ دیا کہ قرآن کافی، نہیں بھائی، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ قرآن ایک بیس ہے، ہمارا فاؤنڈیشن ہے اور ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہی کو نہ جانے ہم لوگ کیسے سٹیزنس ہیں۔ تو اسی لیے لازمی ہے کہ یہ مومنٹ شروع ہو اور یہ مومنٹ تیزی سے پھیلے، اور یہ جو مسلم امہ کی حالت ہے، میں ایک جملہ کہوں گا، امید ہے کہ یہ تازگی ہمارے ذہنوں میں آئے، میرا پاسٹ، انسان کا انفرادی پاسٹ، اور اس کو قرآن کے سامنے رکھیں، قرآن آئینہ بتائے گا تمہارا فیوچر کیا ہے، اور اسی طرح سے ایک قوم کا پاسٹ، اگر ایک کردار ہے، اس کا ایک کیریکٹر ہے، کیریکٹرسٹک ہے، اس کو سامنے رکھیں، قرآن میں ٹیلی کریں، قرآن بتائے گا کہ ان کا آئندہ حشر کیا ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین کی سیر کرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا حشر کیا ہوگا۔ یہ کون ہے جنہوں نے ڈینائی، کس چیز کو ڈینائی کیا؟ ریالٹی کو ڈینائی کیا، ٹروتھ کو ڈینائی کیا۔ ظالم نہیں بن سکتا، قرآن نے کہا اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ظالم سے رحمت الہی کی دوری ہے، یعنی اللہ اس کے پاس نہیں ہے، ذات پروردگار اس کے پاس ساتھ نہیں ہے، اب وہ وڈرا ہو جائے گی اللہ کی ولایت، ما لکم من اللہ من ولی ولا واق، نہ کوئی بچانے والا ہوگا، نہ کوئی سرپرست ہوگا۔ قرآن نے کہا ان الکافرین لا مولا لہم، جھٹلانے والا کافر، وہ ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے کافر کسی گھر میں پیدا ہونے سے کافر نہیں ہوتا، کافر وہ ہے جو جانتا ہے، جان کر جان بوجھ کر جو ہے ڈینائی کرتا ہے حقائق، وہ کافر ہے۔ کافر کا کوئی مولا نہیں ہے، کافر ان الکافرین لا مولا لہم، ان کا کوئی مولا نہیں، کوئی سرپرست نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہ جو مغربی دنیا، یہ فرسٹ ورلڈ کنٹری سرپرستی کرے گا، یا چائنا بچا لے گا، یا رشیا بچا لے گا، کوئی نہیں بچائے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، فرعون کو کسی نے نہیں بچایا، نمرود کو کسی نے نہیں بچایا، عاد و ثمود کو نہیں بچایا، یہ قرآن کے قصے صرف ایسے ہی قصے ہیں، وہی حشر صدام کا ہوا، وہی حشر ہوا القذافی کا، وہی حشر ہونے والا آج کے ظالمین جو ایک گھرانہ، 2000 کا گھرانہ پورے مسلم امہ کو ہائی جیک کیے ہوئے ہیں۔ جب قرآن کے آئینے میں ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو قرآن ان کو ڈائریکٹ کر کے بتائے گا تمہارا جو ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالمین بہت جلدی جان، سا یا سا جو عربی جاننے والے، عربی بھی عربی پہ کام ہونا چاہیے، افسوس یہ ہے کہ دنیا نے، خصوصاً مسلم امہ نے اس پہ کام نہیں، کام کیے ہوتے تو آج ہمارے پاس جو فرسٹ لینگویج دنیا میں انگلش بنا کر کے چھوڑے ہیں، عربی ہوتی، لیکن ہم لوگ کہاں ہیں، ہم لوگ کامپلیکس میں مبتلا ہے۔ قرآن صاف کرا کہ جو کامپلیکس میں مبتلا ہوگا کامیاب نہیں ہو سکے گا، نا امیدی بربادی ہے، احساس سے کمتری بربادی ہے، دونوں چیزیں نہیں ہونا چاہیے، اور آپ سے ناظرین سے گزارش، اپنی انفرادی حیات میں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کافر ہے جو نا امید ہوتا ہے، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو سب سے بڑی ذات ہے، ذات پروردگار ہے، وہ قوت کا آپ محسوس کریں، اور دوسرے جو ہے کبھی انفیرن ولا تہنو ولا تحزنو وانتم الاعلون، کبھی گریف نہیں ہونا چاہیے، کبھی تم میں رنج و غم کمتری کا احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ تم بلند ہو، اعلون ہو، اعلی ہو، بلند ہو۔ یہ احساس کون کرے گا؟ جو اپنی قیمت سے آگاہ ہوگا۔ اپنی قیمت کون بتائے گا؟ قیمت ہماری کچھ نہیں ہے، مثلا صفر ہیں ہم لوگ، کچھ بھی نہیں، حقیقت میں بھی کچھ نہیں ہوں، صفر ہوں میں، اگر اس صفر کو، اگر اس زیرو کو کوئی قیمت لگانا ہے تو ایک نمبر لگانا پڑے گا، ایک اگر لگایا آپ نے تو اس صفر کو لیفٹ پہ بھی لگائیں گے تو نہیں کام آئے گا، رائٹ پہ لگانا پڑے گا، तब कहीं 10 होगा, कहीं 100 होगा, कहीं 1,000 होगा, कहीं लामतनाही नंबर हो जाएंगे। जब तक वो ज़ात नहीं होगी, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती ला शरीक लिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी हयात, मेरी मौत, मेरे सब कुछ उस एक की वजह से, कीमत जो है उस ज़ात परवरदिगार की वजह से। अगर इसको समझें तो अगर हवा के दोष भी हैं, आग के सामने भी जा रहे हैं, हल्ला का हाजा या इब्राहिम, कोई हाजत है इब्राहिम? कहना तुमसे नहीं है, इसलिए कि मेरे पास वही एक है और वो बचाएगा, मुझे मालूम है। आज मुस्लिम उम्मा जो दरबदरी की कैफियत में है, इसलिए कि उस एक को, उस विलायतुल्लाह से दूर हो चुकी है। कुरान कह रहा है उनका नतीजा क्या होगा, वसयअलमुल्लदीन ज़लमु अय्यमुन क़लबीन, बहुत जल्द, मानो सा के माने बहुत जल्द, वेरी सून, हमने देखा बहुत। तो कुरान कुरान, इसलिए मौलाना अमीर मोमिनीन अपनी वसीयत में भी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, अलैहिम अस्सलाम को दी है, उसमें भी यही फरमाया है, अल कुरान अल कुरान अल कुरान। देखो बहुत होशियार हो, कुरान कुरान। तो पहली गुजारिश जो दारुल कुरान की हमारी मुसलसल है, वो ये है कि इस किताब से हमारी कुर्बत ज़रूरी है। अगर हम इज़्ज़त चाहते हैं, हमारी इनफरादी इंडिविजुअल लाइफ पलट करके कवी हो जाए और इज्तिमाई लाइफ, सोशल लाइफ अच्छी हो जाए, इस कुरान से करीब हो जाए। और ये कुरान बताएगा कि तुम्हारे साहिबान कुरान कौन है, तुम्हारे टीचर्स कौन हैं, वो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। इस मुकदमे के बाद हमारी गुफ्तगु हो रही थी कि आया कुरान साइंटिफिक किताब है, उसका जवाब ना, कुरान किताब हिदायत है। आया साइंस है मौजूद कुरान में, हर तरह की साइंस मौजूद है। अब जो साइंस का नाम ले सब मौजूद है, हाँ वो पॉलिटिकल साइंस चाहिए तो है मौजूद है। इंशाल्लाह हम जो है गुफ्तगू जो करते हैं विलायत के सिलसिले में, पॉलिटिकल साइंस के सिलसिले में, मुसलसल बता रहे हैं कि खुद इस्लाम एक मुकम्मल एक पॉलिटिकल साइंस का नाम है। और उसी तरह से साइंटिफिक दुनिया की डिस्कवरीज जितनी भी दुनिया में हो रही हैं, कुरान उनकी तरफ इशारा करता है। बजाय इसके कि दुनिया से हम सीखे, कुरान पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया को हम बता सकेंगे कि क्या है कुरान। ये सूरह अंबिया कुरान का 21वां सूरा है और उसकी 30वीं आयत है जो मुसलसल हम सुन रहे हैं। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्ना समावाती वल अर्दा कानता रत्कान। क्या काफिर, और काफिर के सिलसिले में भी, मुस्लिम के सिलसिले में, मोमिन के सिलसिले में भी हमने बताया है, नेचुरल बर्थ का नाम कुफ्र नहीं है। एक नॉन बिलीवर के घर में पैदा हो जाना एक काफिर नहीं है, एक मुसलमान के घर में मुसलमान पैदा हो जाना मुसलमान नहीं है। तबीयत के अतबार से, नेचुरल सिटीजनशिप की वजह से उनको कहते हैं नॉन मुस्लिम, इनको कहते हैं मुस्लिम। लेकिन असल मुसलमान कौन है? जो कुरान को समझे, दीन को समझे, कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, उस पर जितना अमल करता चला जाएगा उतना ही मोमिन, इस्लाम उस पर आएगा। नाम रख दिया हमने, मेरा नाम रख दिया मोहम्मद ज़की नाम है, अगर मैं अमल नहीं करूँगा तो वो नाम ही रह जाएगा। इसी तरह से मुस्लिम उम्मा, इसी तरह से नॉन मुस्लिम है। कुरान जो कह रहा है कि काफिर, वो काफिर जुहूद हैं जो जानबूझ कर जिन्होंने इनकार किया है, यानी दे नो रियलिटी। अवलम यरल्लज़ीन कफरू, ये लोग जो देख नहीं सकते, क्या वो लोग देखते नहीं काफिर, ये जो डिनाई करना है, डोंट दे सी अन्ना समावाति वल अर्द कानता रत्कन, ये ज़मीन व आसमान एक ऐसी जगह थे जो फैले हुए नहीं थे, लेकिन एबिलिटी थी रत्क की, रत्क यानी एक्सप्लोजन की, वो बिग बैंग की। कुरान कहता है कि वो जो बिग बैंग का कॉज तुम नहीं देखना चाहते वो हम ही हैं, फतक ना होमा, हमने इसको, इन दोनों को खोला। उसके बाद की आयत, गुज़श्ता हफ्ते हमने गुफ्तगू की, वजअलना मिनल माई कुल्ला शयइन हाय, हर चीज़ की हयात जो है पानी में रखी, ये साइंटिफिक दुनिया। तो चलिए आइए आगे बढ़े। उसके बाद कुरान कहता है अफला यूमिनून, इतने रियलिटी के बाद फिर भी ईमान नहीं लाते। तो एक आदमी कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, कोई उस्ताद के सामने अपने जानों को तय नहीं किया और ऐसी दुनिया में जबकि फ़ी दलाली मुबीन अटर डार्कनेस हैं, वहाँ पर एक ऐसी किताब लाते हैं जिसका कोई पैरेलल नहीं है, और इस चैलेंज के साथ फातू बे सूरत में मिथले, लाओ एक सूरा जैसा इसका, कोई नहीं ला सकेगा, हकीकत में नहीं ला सका, नहीं ला सकेगा। अब आज़ उलमाएँ कहते हैं नहीं, सिर्फ अरबी ज़बान की हद तक ही नहीं है, कुरान चैलेंज नहीं कर रहा है, हत्ता मफहूम कुरान माना कुरान को भी कोई नहीं ला सकेगा। जो साइंस कुरान बता चुका है उस साइंस को भी कोई बदल नहीं सकता, और नहीं ला सकेगा जवाब, जवाब उसका कोई नहीं ला सकेगा। जब ये बात समझ में आ रही है तो हमें यकीन है, तो कुरान की आयात को थ्योरेटिकल नॉलेज या थ्योरेटिकल साइंस नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक्चुअल साइंस यही है, लॉ राय बाफी है। फिर रिसर्च करना चाहिए, इस कुरान के बताए हुए रास्ते को सामने लेकर के रिसर्च करें और दुनिया को साबित करें कि यह है। मसलन अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अगर आप लोग जानना चाहते हैं ये सुकून जो इंसान की तलाश में है, इंसान जिसकी तलाश में है, हर एक आदमी कहता है मौलाना सुकून नहीं है ज़िंदगी में, इस सुकून कहाँ से आएगा? कुरान ने कह रहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि तुम्हारे कल्ब जो हैं, तुम्हारा वजूद जो है, इत्मीनान कब होगा? जिक्र परवरदिगार से होगा। अभी देखना चाहिए कि अफकार से इंसान की हयात में क्या तब्दीली आती है। जापानी एक साइंटिस्ट ने, एक रिसर्च करने वाले ने रिसर्च किया कि पानी पर अच्छे अल्फाज बोलने का असर क्या होता है, और उसने लैब में जाकर के उस क्रिस्टल को देखा, जो पानी को इसने हमेशा वो बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, ये कहा कि मसलन बैड 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 है, जिस पानी पर उसने हम्द सना जैसे कि वेरी गुड, वे अच्छी अच्छी बातें की, उसके क्रिस्टल को देखा, उसके पूरे कोने जो है साफ है, हेक्सागन जो उनके साफ है। ये क्या बताता है? ये क्यों दूसरे बोले, हम क्यों ना आए? मसलन इंसान का हालत नमाज में अपने 7 मकामात को, 7 पार्ट्स को, पेशानी, 2 हाथ और 2 घुटने और 2 टो ज़मीन पर रखना, इस पर रिसर्च करना चाहिए। ये जो दिल की कैफियत है, इवन हार्ट स्पेशलिस्ट को चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट को चाहिए रिसर्च करे, ये क्या कैफियत है हार्ट का, वो सिचुएशन क्या है जिसमें वो कौन से एंजाइम क्रिएट हो रहे हैं जिसमें उसको सुकून हासिल हो रहा है, ये कौन करके? मुझे ऐसा मौलवी करेगा ना? मौलवी एक मखसूस दायरे का नाम है, साइंटिस्ट नहीं बन सकता, ये साइंटिस्ट मौलवी नहीं बन सकता। सबका काम क्या होना चाहिए? सब लोग इस मंबे को तलाश करें और काम करें, और उसके बाद दुनिया के सामने पेश करें, तो बहुत खूबसूरत नतज निकलेंगे। तो कुरान को एज ए थियोरेटिकल साइंस नहीं, प्रैक्टिकल रियलिटी के तौर पर देखें और उस पर इंतबाक करें, मुंतबिक करें, टैली करें, और दुनिया को साबित करें कि ये कुरान है जो 1400 साल बोला था, और आज की आपकी ये साइंस, आज हमारी रिसर्च ये कह रही है। तो सुकून सबको चाहिए, कहाँ से मिलेगा? कुरान कहता है कि वहीं मिलेगा जहाँ पर जिक्र परवरदिगार, जिक्र की जब तशरी शरा करेंगे तो ये तस्बीह सजदा का ये नहीं है, बल्कि ये पूरा सिस्टम है इंसानी मुआशरे के लिए। जिक्र अल्लाह अल्लाह, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा दें कि अल्लाह अल्लाह कहना यकीनन जिक्र है, लेकिन जिक्र नहीं है, जिक्र ये है कि जहाँ पर शरीयत बताई जा रही है तुम्हारे एक्शन को, पांचों वाजिबो हराम सुन्नत मकरू मुबा, इन पांचों को अपने वजूद में ढालना है। वाजिबा से दूरी का नाम नहीं है, वाजिबा से कुर्बत का नाम है, महरमा से कुर्बत का नाम नहीं है, महरमा से दूरी, हराम से दूर हो जाना, ये जिक्र परवरदिगार। ये तब होगा तो यकीनन सुकून होगा। मेरे फैमिली में क्यों प्रॉब्लम है, आपके फैमिली में क्यों प्रॉब्लम्स है? इसलिए कि हमने पास जिक्र नहीं है। जिक्र के माने जो कवानीन जो दीन ने बताए हैं, वो दीन के कवानीन को हमने बिल्कुल बालाए ताक रखा है। उसकी वजूहात में से एक वजह यह है कि इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा एक्ट करती है। यकीनन हम लोग जैसे मगरिब में मैं रहता हूँ, जो लोग फसल कंट्री में रहते हैं, हम ये समझ गए हैं कि यही जन्नत है, यहाँ सब कुछ यही है। जब हम अपने कंट्रीज में जाते हैं देखते हैं कि हत्ता जो बेसिक सफाई है वो चीज़ नहीं है, जो कुरान जिसको कहता है, हदीस जिसको कहती है, नज़ाफत ईमान के अज्ज़ा में कहती है। और अब हमको जो है दूसरे लोग आकर के कह रहे हैं कि तुम्हारे कंट्रीज़ में किस तरह से सफाई होनी चाहिए, गैर बता रहा है, जब जिनको नहाना नहीं आता था वो हमको बता रहे हैं कि किस तरह से करना चाहिए। तो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कल्ब, रूह और जान यानी अक्ल, ये तमाम सिनोनिमस वर्ड, कल्ब यानी वजूद इंसान है। अगर तुम्हारा वजूद चाहता है इस पुरसुकून रहो तो जिक्र परवरदिगार से रह सकता है। तो इसमें रिसर्च की वास्ट दुनिया खुल गई है, आपको हमें काम करना है। क्यों नहीं एक कार्डियोलॉजिस्ट एक सजदे की हालत पे वो पूरे मेकानिज़म को समझे कि क्या कैफियत है हार्ट की, पूरे ब्लड स्ट्रीम किस तरह से होता है, किस तरह से ब्लड पूरे वजूद में जाता है जब वो हालत सजदे में रहता है। इसलिए कि हदीस में है, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, असजदा मेराजुल सलात। मोमिन का असेंशन जो है नमाज है, उस बारगाह में चले जाने के बाद कोई नहीं है, अल्लाह अकबर सबसे बड़ा वही है। और उसके बाद और अगर नमाज का नमाज की मेराज देखना चाहे वह हालत सजदा, वो कैफियत सजदे की जो है, जितनी देर से, इस रिवायत में कि जितनी देर सजदा करेगा उतनी देर शैतान को परेशानी, शैतान यानी नेगेटिव फोर्सेस है, वो परेशान है। अज़ीज़ान गिरामी, इन आयात को नेगलेक्ट ना करें, कुरान को नेगलेक्ट, नेगलीजेंस हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और कुरान को सिर्फ सवाब की खातिर ना पढ़ें, कुरान को इल्म से मुनव्वर होने के लिए, नूर इल्म से मुनव्वर होने के लिए पढ़ें। इसलिए कि जैसी नीयत होगी वैसी बरकत होगी। सवाब के लिए पढ़ें, सवाब मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। उतनी देर तक दुनिया के झमेलों से दूर रहना खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये मकसद नहीं है। मकसद ये कि आप लीड करना चाहिए ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को। तो एक मोमेंट होना चाहिए, वो मोमेंट ये कि हम लोग दुनिया को बताएं कि कुरान ही है जो तुम्हें हयात हकीकी इंसानी की तरफ दावत देता है। अगर इस कुरान पर अमल करोगे तो तुम्हारी कामयाबी है। चुनांचे आज मगरिब में तेज़ी से जो इस्लाम फैल रहा है, गोये कि जो ज़ाहरन इस्लाम है वो अलग है, जो बातें ना अगर मालूम हो जाए तो यही मगरिब दुनिया दीवानों दीवाना वार आ जाएगी। इसलिए कि इल्म जो रखता है उसको समझाना बहुत आसान है, जिसके पास थोड़ी से सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको समझाना बहुत आसान है। और खुसन मकतब अहले बैत के परवाने लाजिमी है कि आज की दुनिया में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, असल दीन मुबीन इस्लाम जो मरकज़ से हटाया जा चुका है उस मरकज़ की तरफ लाना लाजिमी है। सनुरी ही मायात नफिल आफाक वफ़ी अनफुसहिम हत्ता यतबन्ना लहुम अन्नहु अल-हक। सूरह फुसलत, हामिम फुसलत, 42वां सूरह, 53 आयत, जिसमें ज़ात परवरदिगार कह रहा है कि बहुत जल्द इस यूनिवर्स में तुमको निशानियाँ बताएंगे, तुम्हारे वजूद में निशानियाँ बताएंगे। अगर ज़रा सा हम गौर करें हमारे वजूद में, हमारी ज़िंदगी को ज़रा सा एनालाइज करें, हम देखेंगे निशानियाँ। इसीलिए मोमिन की जो लॉजिक होगी बिल्कुल अलग होगी। जहां पर यह गुफ्तगू हुई है कुरान में 190 मरतबा समावात आया है, अवलम यरल्लज़ीन कफरू अन्नस समावात, जमा का सेगा है, प्लूरल सेगा है। बाज़ जगह सब समावात और ये सात आसमान क्या है, इसमें यही है कुरान की खसूसियत, सेवन हेवंस। फिर हेवंस और इनका तसव्वुर एक वास्त दुनिया साइंस को खोलता है, ये क्या सेवन हेवंस है। उस जमाने में जबकि जिनके पास ना टेलीस्कोप है ना कुछ, ना कुछ भी नहीं, वो लोग तो जान जा इन्हें समझ में नहीं बात। अल कुरान युफस्सिर हुज़ ज़मान, कुरान बाज़ वक्त ज़माना जो है कुरान की तफासिर को बिल्कुल वाज़े कर देगा। साइंटिफिक डिस्कवरीज जितनी होती चली जाएंगी, कुरान की बातें वाजी होती चली जाएंगी। तो साइंटिफिक डिस्कवरी बजाय इसके कि गैर करे, अगर मोमिन मुसलमान करेगा तो कितना अच्छा होगा। आई विश वी विश ऑल आता, हम लोग खुदा इंशाल्लाह तौफीक दे हमें कि मुसलमान दुनिया के सामने आए। यकीनन हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट जो फाउंडेशन जिन्होंने डाला है, जिन्होंने बुनियादें रखी हैं सेहत के सिलसिले में, अबू अली सिन्हा से लेकर के जाबिर बहैयान, ऐसे ऐसे उलमा, ऐसे स्कॉलर्स जिन्होंने बुनियाद साइंस रखी है, अगर उस पर काम किया होता तो आज हम लोग बहुत कुछ काम करते। लेकिन हमें बाकायदा हटाया गया उस मरकज़ तहकीक से। वो बगदाद जहाँ पर मरकज़ इल्म था, आज जो है कत्ल गारत की जगह हो गया। मक्के से बजाय इसके कि सुलह सफाई की बातें होती, आज मज़लूम यमनियों पर जुल्म ढाया गया। इंशाल्लाह कल हम गुफ्तगू करें। अल्लाह से दुआ है कि हम लोग इंशाल्लाह इस मरकज़ हिदायत क़ुरान से हम लोग करीब होकर अपनी ज़िंदगी और अपने औलाद और अपने फैमिली, अपने जानने वालों की ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करेंगे। आई बिगिन इन द नेम ऑफ अल्लाह द ग्रेशियस द मर्सीफुल। वी आर टॉकिंग अबाउट क़ुरान एंड साइंस। Is it a Quran is a scientific book? The answer is Quran is a book of guidance. Hudallin nas. That guidance is not only for the believers, the Muslims. No, Hudallin nas. It is a book for entire humanity. This is very important for all of us to ponder. Quran is not a communal book. It is a universal book. So. There is a science in Quran for what? For the guidance of humanity. The more intellectual you want to become, the in-depth knowledge is there in Quran. In a such a time where there was no telescope, Hubble we have very great telescope, that time nothing was there. Who is this person who never went to any university, who never went to any teacher? He brings forth a beautiful book, it is which is Quran, challenges fa'atu bi suratin min mithli, bring a Quran like of it. Nobody can do it, and challenges you bring your own helpers, you cannot do it. And they did try. It is not talking about the literacy of Arabic, even the meanings in the, even the scientific things which Quran represent, Quran presents. No, it is unparalleled, nobody can bring. So Quran is a fountain head of knowledge, and at the moment we have to start is I have to start myself when we start morning. Did I recite 10 ayats a day, as our Lord Prophet says, recite 10 ayats a day? Did I do that? If I have done, then I can ask my children also. I can ask my brothers, my sisters. As per my information, as I go all over the world, many classes I take. When I ask to any classroom, I consist of maybe 50 people, not 1% are reciting the Quran. It is utmost. Maybe some month of Ramadan, maybe 5 to 10%. If Quran is neglected in reading, the second aspect is understanding. It's too late. It's too far. So first step is, let's start reading the Quran. And read the Quran with inquisitive mind, with curiosity. Each and every, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Read Quran with tartil. What is the meaning of go slow? لَا تُحَرِكْ لَسَانَكَ اللَّهَ تَعْجَلَ بِهِ. Don't twist tongue twist. It's not a tongue twister. No, take it easy. I have to finish this para. No, not necessarily. You cannot finish the Quran. Quran is a vast knowledge. It's not a book to finish. It is a book to start. Quran says, go slow. Tadabbur. Afala yatadabbarun. Afala yatafakkarun. Ponder. Go. Understand. And we shall show you the signs. Allah says, "Sanurim ayatina," our signs, fill offer in the universe and within yourself. You will find the reality. To extend, what is going to be clear? There is a a creator for the universe. The discussion about seven heavens is there in the Holy Quran. What is the meaning of seven heavens? A lot of discussion is there, and that's the beauty of Quran. Quran gives one word and a vast chapter of understanding starts flowing in our mind. What is the seven heavens? Just like Quran says, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. In Surah Al-Yasin, many a times we recite. Quran says the sun is floating, the word floating has been used 1400. Now the scientists, they say the word floating. So these galaxies which are floating, it's a scientific thing which has been used 1400 years before. And without telescope, without, that means there is a knowledge which opens up a vast knowledge. Without going into the mystical part, the hadith which says, "Al-ilmu nurun yaghdhifuhu Allahu man yashaa min 'ibadihi." The one knowledge is you start from KG junior, then go grade 8 or maybe O level, A level, then graduation, then to the PhD. It's a knowledge which you earn, you seek, but one knowledge. You reach to that knowledge. It's a light Allah subhanahu wa ta'ala puts in. What is this light? It's a, we are in dark because we don't have knowledge. So there is a light. So the medium is the personality like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, who brought light to in this darkness. And that light tells me this is the reality. Just like in a room, if there is dark in the night, we cannot see nothing. Once you open the light, we see everything. The more is enlightened the room, the better chances of looking each and every part of the minute details of that room. Likewise, in the world where darkness is there, Prophet says, Quran is the light. Once you open that, then you realize who is what. So seven heavens, what are these seven heavens? Lot of discussions. And Mufassirin, they are puzzled. Allama Tabatabai, he says, some of the ayats has to be going with the latest knowledge, discovery of scientists. Scientific discoveries. It is not something which is mystical thing which has been presented by the Quran. It is a reality. Some people, they say these are the, just like Quran in Surah Ali Imran, there are two kinds of ayat. One are ayat-e-muhkamat, another ayat-e-mutashabihat. Muhkamat are the clear cut meanings are there. Mutashabihat, allegorical, which is vague, we cannot understand until rasikhuna fil ilm, those who have in-depth knowledge. In order to get away, some mufassirin, they say, these are the ayats of mutashabihat, these are the allegorical ayats, we don't have much understanding about it. Allama Tabatabai, he says, no, it's not the reality. That is reality is, these are the ayats which are scientific ayats. You and me, I have to understand. And I hope when we say us seven heavens, these are the layers of the universe. No, layers of the universe. It's the planets, it's the galaxies. How many galaxies? They say in billions of galaxies. So this has been divided into how many? When we say summer, when we say sky, we see it. Oh, there is a blue sky. No, there is no blue sky. You have to go higher, and the more you go higher, you don't see. So these planets has been divided into seven, the major aspect of the planets. Another which has been used in Quran, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. This is also, we need a lot of insight to understand this. And certainly we have adorned this lower heaven, as-sama, this is the lower heaven. When we go in the dark, we see the stars, so many shining stars. Sama al-dunya, this sama of dunya, that means there is a sama al-akhirah also. That sama is, we don't know, that we have very little knowledge about it. There is a life after the death, there is a life, there is in heaven, there is a hell. All that life is, it is not that much easy to even comprehend, like us, like my student. I'm a student, I'm not a mufassir. I read the tafsir of the ulama. So Quran says, and certainly we have adorned this lower heaven with lamps, masabih. This is our stars with the light. And we have made these missiles for these shaitans. وَجَعَلْنَا رُجُومًا. You see, every night the stars are some, when we see the shining stars, android, we call it, that burning star. What is it? Quran says, this is something to protect the shaitanic powers to reach to the stars. So now, what it is, inshallah, we'll try to understand and try to do according to the tafsir of Ahlul Bayt, alayhim salatu wasalam. وَالسَّمَاءِ is ذَاتِ الْبُرُوجِ, by the heavens holding mansions of the stars, burj. So now there are 12 burj, they called it. The 12 stars, those stars every day, some people they see, oh, what is my star is telling me? No, don't go into that. Stars here means something else, what we are looking is something else. The 12 burj, all this has been taken from where? From the Holy Quran. By the wasamai dhatil buruj, some of the ayats, Quran has, inna zayyanna samaa dunya bezeenatin al-kawakib. Surely we have adorned the nearest heaven with an adornment, the stars. Now scientists think they are stars one to the other, thousands of miles away. And we look as a star. But that itself is the world. The more discovery has to come and to understand and say that this is the Quranic values, which is we are talking about. وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. It is also, it's a very difficult to interpret. And there is a safeguard against every rebellious shaitan. The burning stars, when we see, now scientists, they are saying, these are the protection. And Allah says, this is the shaitan. So that means something is there going up, and someone has to stop that. What is this? That's, we need to go into the meaning of shaitan. That Iblis who has not done sajda to Hazrat Adam, that is one person. His quality was the shaitan. His attribute was shaitan. The many meanings have been given to shaitan also. One of the meaning is germs also shaitan. For example, don't drink, don't exceed your mustache, so that when you drink water, mustache goes into water. What happens? They say, there is a shaitan will be there. Some of the Muslim brothers, they do very clear. So lesser the mustache. So is there a shaitan? Is it sitting there? So when we go into detail, there's no, shaitan is not in the sense of that misguiding force. It is something, germs. So be careful. For example, if nails, so cut your nails, there's shaitans will be there. So that could be possible when we interpreted these ayats, which is saying these stars, which is burning stars, is coming and draw it. So the protection is for the earth, without which this earth would blow into pieces. These are the ayats which opens up a vast knowledge for human being. And our younger generations has to open this Quran and open with inquisitive mind, curiosity, and try to go in depth. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويغضفون من كل جانب. They cannot listen to the exalted assembly. They are thrown at from every side. دهورا ولهم عذاب واصب. Being driven off, and for them is a perpetual chastisement. All of these ayats are scientific ayats. For example, Surah Ar-Ra'd, inshallah we'll discuss in future. Surah Ar-Ra'd is thunder, the lightning, the power of lightning, what it does to the earth, how much benefits, how many gases it kills, we don't know. يسبح الرعد بحمده. So Quran says there is a tasbih of glorify. Any this Ra'd, which is thunder, glorifies. So then now the two meanings. Number one, thunder we have to interpret, and also glorification of thunder. So now the tasbih itself becomes much more perplex, much more detail we need to go, much more understanding. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. Tasbih of the universe. What is the tasbih of the universe? And one of the sense of tasbih, Imam Zainul Abidin عليه الصلاة والسلام in his dua of Makarim al-Akhlaq, he says, اللهم استعملني فيما خلقتني له. Well, my Lord, use me for the cause for which you created me. So if I have been used for the cause which I have been created, I am doing tasbih. So this universe is doing tasbih, means they are going according to the set path which has been done by Allah subhanahu wa ta'ala. ذَلَكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Taqdeer, that is the taqdeer, is accurate measurement. When we talk about, we say, this is my taqdeer. It's an accurate measurement. No. تقدیر اپنی تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. If you are an ocean, I don't see any moment in your ocean, Iqbal says. And if you are a Muslim, but your will is not Muslim. عبس ہے شکوے تقدیر یزدان. You say, میری تقدیر پوٹی ہے, my fate is such, my fate is such. Many people, they become couch potato and they say, I cannot do nothing because my taqdeer is done. Abbas hai shikwaye taqdeer yazdan, to khud taqdeer yazdan kyun nahi hai? This is a very vast knowledge, he says. He says, this is the universe which said, we don't want this, O Allah. Inna aradana al-amanati wa-amanati al-samawati wal-ardi wal-jibal fa-abayna yahmilnaha wa-ashfaqna minha. فَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. We have given our trust to the universe, hills, the samawat and ard. They said, no, we don't want this. What it is? The Mufassirin opens a chapter of many things. It is Islam, it is Iman, etc., etc. One of the meaning is the ikhtiyar of humankind. This is so beautiful. My choice. This earth has no choice. It is moving according to the direction. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Allah subhanahu wa ta'ala put to them to go in circumference. This universe is moving and the sun is moving. It is a center of the universe. Entire galaxy is moving. That is a taqdeer. That is accurate measurement. They have, and they themselves say, we don't want to follow our own will. You tell us and we will follow. And that is a tasbih. So that means, I am doing tasbih is not only tasbih. Tasbih pherun kisko gherun. No, that is not the tasbih. Tasbih of me is following the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever He says, if I follow, that is my tasbih. My brothers and sisters, I hope all of us little bit sense of understanding of the Quran and the depth of the Quran. When Quran says something, it is not theory, it is a knowledge. ذَلِكَ الْكِتَابُ اللَّهُ رَيْبَ فِيهُ. With one word, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. And we have given life because of what? Water. Okay, vast knowledge opens here. So our water is the base of life, foundation of life. Without water, there is no life. Mawlana Amir al-Mu'mineen in his sermon, which is collected by Sayyid Radhi in Nahj al-Balagha, the first sermon, creation of the universe, if you read that sermon, first thing was the water. May Allah give us inspiration to be closer to this book of knowledge, book of life. And again I request, not from me, from the Quran. Quran says, read. فَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِّرٍ. We made it very easy, read. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. As much as you can. Our beloved Prophet says, at least read 10 ayats. So your problem, my problem, solution. First solution is, let's start reading. Let's start a moment. Make a pamphlet. Oh, my brother, Muslim brother, did you read 10 ayats? Prophet Muslim said, 10 ayats a day with the translation. If we can start with this moment and all Muslims are reading, second step is, did you understand? Do you understand? أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ. And the third part is, are we acting according to Quran? If we act, this world becomes heaven. And that is the challenge of Islam. How to change this world into heaven is the challenge. Not going to heaven after the death. So that means this world becomes hell. Nothing wrong. No, that is not a challenge. If we follow Islam, this world becomes heaven. May Allah give us this inspiration, this tawfiq to follow this. First of all, read this Quran, and come out of the clutches of darkness and come out and be free and understand this Quran. Once we understand, may Allah give us the inspiration to act upon what we learn. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.